శాంతి. 26th May 1969. సంఘటన మే రహనే కే లియే భీ సహన శక్తి చాహియే. ఫైనల్ పేపర్ జో వినాశ కా హై ఉస్మే పాస్ హోనే కే లియే భీ సహన శక్తి చాహియే. వహ సహన శక్తి కీ రిజల్ట్ మెజారిటీ మే బహుత్ కమ్ హై ఇస్లియే ఉస్కో అబ్ బడావో. సహన శక్తి కైసే బడేగీ कैसे पड़ेगी, जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो स्नेह में शक्ति आ जाती है. स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है, बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने लिए तैयार हो जाती है. उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का वो परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है. तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है. स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है. 69 की मुरली है, 26 मई की. तो क्या सुना? संगठन में रहने के लिए क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए. फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए. वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में कम है, बहुत कम है. इसलिए अब क्या करो, इसको बढ़ाओ. कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही होंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है. स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? कौन सा उदाहरण दिया? जैसे कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है तो माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति स्वतः आ जाती है. बच्चे के लिए क्या करती है? सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है. उस समय स्नेह में कुछ भी अपने किस चीज की फिक्र नहीं करती है, शरीर की व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता. तो ऐसे ही अपने अंदर निरंतर स्नेह रहे तो क्या होगा? स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है. स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है. तो संगठन में रहने के लिए चाहिए सहन शक्ति. फाइनल पेपर जो विनाश का होगा उसमें पास होने के लिए चाहिए सहन शक्ति. और बाबा ने रिजल्ट बताई कि सहन शक्ति वर्तमान समय बहुत ही कम है. तो क्या किया जाए, कैसे बढ़ाएंगे उसको? क्या विधि बताई विनोद भाई, कैसे बढ़ाएंगे? स्नेही बनने से एक और एक है स्नेह से, और कैसे बढ़ाएंगे? मान लेना चाहिए, स्वीकार, एक्सेप्टेंस. तो क्या मान लेंगे परिवार में, क्या मानेंगे? सब अपने हैं, सब वैरायटी है. सबसे पहला प्रश्न है कि सहनशीलता क्यों जरूरी है. दूसरा, सहनशील कैसे बने. फिर है सहनशील क्यों बने. यह भी प्रश्न है कि सहनशीलता है क्या। परिभाषा सहनशीलता क्या है? सहन करना, किन किन चीजों को सहन करना पड़ता है या करना चाहिए? व्यक्ति में बहुत सारी चीजें हैं, व्यक्ति में उसके विचार, उसके ओपिनियन, उसके बोल, उसकी भावनाएं और उसका नेचर, उसकी चलन, उसका स्वभाव, संस्कार, उसकी गलतियां, उसके कर्म, संकल्प, बोल, कर्म, चलन, विचार, तो एक तो व्यक्तियों को सहन करना और दूसरा परिस्थितियों को सहन करना। परिस्थितियों में भी क्या क्या? अचानक आने वाली परिस्थितियां, आर्थिक, समाज, सरकार, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, संस्कार की भी अटैक, तो ये सारा कुछ दो मुख्य है, एक तो व्यक्ति और दूसरा है परिस्थिति, इनको सहन करना। क्यों सहन करना है? श्रीमत है, क्यों सहन करना है? स्थिति को शक्तिशाली रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए क्यों सहन करना है? फाइनल पेपर में पास होने के लिए और क्यों सहन करना है? हमारा स्वभाव ही है, सहन करते जाओ। और क्यों सहन करना है? आगे बढ़ने के लिए, पावर बढ़ने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए और अनुभवी बनने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, आदर्श बनने के लिए, सैंपल बनने के लिए, उदाहरण बनने के लिए, एक रोल मॉडल बनने के लिए और वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए और समाने के लिए, वो विधि होगी। और अच्छी सर्विस करने के लिए और नथिंग न्यू के पास संगठन मजबूत रहे उसके लिए, नहीं तो संगठन टूट जाएगा, दरारें पड़ेगी, संबंधों में टकराव होगी, संगठन में दरार, आधे इधर विभाजन, पार्टीशन और पूर्वज है और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा और शहंशाह बनना है, स्थिति की चेकिंग और दूसरा मजबूरी। अपनी आंतरिक शक्तियां बढ़ाने के लिए, शक्ति है ना वो, क्योंकि शक्तियों का आह्वान करना और शक्तियों को यूज करना ये श्रीमत है उसके लिए और सरलता लाने के लिए। तो सहनशील क्यों बनना, सहनशीलता क्या है? परिभाषा किसको कहेंगे सहनशील? सहनशीलता अर्थात एकर स्थिति, सहनशीलता अर्थात क्षमा, सहनशीलता अर्थात बेहद की दृष्टि वृत्ति, साक्षी भाव और समाना, कौन सी चीजों को समाना, यह मुख्य तो परिस्थिति को हम छोड़ दे तो व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ी हुई जो भी सारी चीजें हैं वो अंदर समा लेना, उसके विचार, मतभेद, संस्कृति, खान पान, मत, उनके ओपिनियन, मत, सब कुछ, कर्म, बोल, चलन, संस्कार, वो सारी कुछ चीजें। तो सहनशीलता क्या है इसके ऊपर और चिंतन कर सकते हैं। सहनशील क्यों बनना है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, अब सहनशील कैसे बने। यहाँ पर बाबा ने कौन सी विधि बताई सहनशील बनने की, सहनशील बनने की यहाँ जो विधि बताई है वो है लव, प्रेम। प्रेम को बढ़ाओ, प्रेम कम है इसलिए सहनशील नहीं कर पा रहे, सहनशील नहीं हो पा रहे। उदाहरण कौन सा दिया, माँ का। क्या उदाहरण दिया माँ का, माँ क्या करती है, सहन करती है। क्यों सहन करती है, प्रेम बहुत है, प्यार बहुत है, इसलिए सहन करती है। वो दिखाया है जापान में अर्थक्वेक जब हुआ था, तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक था और बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो वो जो रिसर्चर्स की टीम थी, वो जो घर जो टूटे हुए थे, फूटे हुए थे, ये देखने के लिए कोई लोग बचे हुए तो नहीं है, उनको निकालने के लिए वो टीम ढूंढ रही थी सारे घरों को। एक घर के पास पहुंचे, देखा कि वो घर तो पूरा ही टूटा हुआ है, सब कुछ गिर चुका है। तो एक रिसर्चर ने देखा, एक जो संशोधन कर रहा था या रेस्क्यूअर जो बचाने वाले थे, उसने देखा एक क्रैक में से एक माँ ऐसी मरी पड़ी है और उसके ऊपर पूरा छत के छत गिरा हुआ है और वो ऐसी नील डाउन है, घुटनों के बल खड़ी है और उसके हाथ ऐसे नीचे है। तो उसने देखा और देखने की कोशिश की क्या है, तो उसको लगा कि नहीं ये तो मर चुकी है, इतनी बड़ी दीवार ऊपर है, परंतु वो हाथ ऐसे है, घुटनों के बल खड़ी है। तो उसने देखा और ऐसा लग रहा था मृत्यु हो गई है, तो उसने कहा छोड़ दो और वो वहां से निकल गया। और फिर वहां कुछ समय आगे जाने के बाद उसको लगा कि ये कुछ टिपिकल पोज में वो खड़ी थी, कुछ तो होगा, ऐसे क्यों कोई खड़े रहेगा। तो वो वापस गया उस वो जो महिला थी उसको देखने, बड़ी मुश्किल से मशक्कत से अंदर घुसे और फिर वो सारी दीवार को थोड़ा ऊपर किया तो देखा कि वो जो माँ थी ऐसे घुटनों के बल और ऐसे झुकी हुई थी, नीचे एक बच्चा था, बच्चा था 3 महीने का और वो भी ऑलमोस्ट दबी गया था, पर ये लोगों ने उसको बचा लिया। और उन्होंने देखा कि उस बच्चे के, 3 महीने का बच्चा था, उसके कपड़े में मोबाइल था उसकी जेब में, और उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज था, वॉइस मेल। उसमें लिखा था कि इफ यू सर्वाइव यू मस्ट नो दैट आई लव्ड यू, यदि तुम बच जाओ तो ये तुमको बताने के लिए है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो उसकी माँ ने वो वॉइस मेल छोड़ के रखा था मोबाइल में मरते मरते, नहीं तो बच्चा गया हुआ था। So that was the ultimate sacrifice by mother for her son. तो माँ क्या करती है, सहन करती है। क्यों सहन करती है, प्यार बहुत है उसका। थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन में भी ऐसा ही एक प्रसंग है, जिसमें एक बार एक लेटर आता है स्कूल से जब वो छोटा सा बच्चा होता है, और उस लेटर में लिखा रहता है, उसकी माँ को वो पूछता है क्या आया है लेटर में, तो उसकी माँ उसको पढ़ के सुनाती है कि ये लेटर में क्या आया है। उसमें लिखा रहता है कि माँ पढ़ के सुनाती है कि तुम्हारा बेटा जो है वो जीनियस है, ये स्कूल इसके लिए बहुत छोटी है, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि तुम्हारे बच्चे की जो प्रतिभा है, बुद्धि है, कुशाग्र है, तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने लायक हमारी स्कूल नहीं है, ना ही हमारे पास टीचर है, अच्छा होगा कि आप इसको घर पे ही पढ़ाओ। तो उसकी माँ वो पढ़ के सुनाती है, तो तब से वो घर पे ही पढ़ता है, फिर स्कूल नहीं जाता है। और एक दिन अमेरिका का सबसे बड़ा खोजी, सबसे बड़ा व्यक्ति बनता है कि जिसने मोशन पिक्चर को खोजा, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको, उसकी खोज की, फोनोग्राफ की खोज की। एक दिन एडिसन ऐसे ही अपने घर में, फिर उसकी माँ तो गुजर जाती है, अपने घर में होता है और ढूंढता है, तो ऐसे खोजते खोजते उसको वो लेटर मिलता है स्कूल का आया हुआ। उस लेटर में लिखा रहता है, योर सन इज मेंटली इल, तुम्हारा जो बेटा है वो मानसिक रीति से बहुत कमजोर है। ऐसे बच्चे को हम यहाँ रख नहीं सकते, हमने कोशिश कर ली, अब अच्छा होगा कि तुम इसको यहाँ ना भेजो और घर पे ही पढ़ाओ, क्योंकि इसकी क्षमता जो है बहुत ही कम है, ये शायद कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। तो लेटर में एक्चुअली ये लिखा रहता है, पर उसकी माँ उसको कुछ और पढ़ के सुनाती है। तो दैट वाज द वो है मदर्स लव। तो क्यों सहन करती है माँ? क्योंकि उसके पास लव। तो क्या कह रहे बाबा? प्यार को बढ़ाओ। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है? कभी अनुभव किया है? देखो, कोई माँ की, बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ के स्नेह, माँ का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है, बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी, अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ भी फिक्र नहीं करती। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं। स्नेह कम है इसलिए क्या, सहन शक्ति भी कम है। तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? स्नेह। और स्नेह को कैसे बढ़ाए? बाबा ने कहा है कि तुम्हारा स्नेह बहुत कम है, स्नेह को कैसे बढ़ाएंगे? संबंध को बढ़ाने से, टाइम देने से, बैठने से, बातचीत करने से। और स्नेह कैसे बढ़ाए? परिवार से स्नेह, परिवार या व्यक्तियों से स्नेह बढ़ाने को बातें चल रही है, कैसे स्नेह बढ़ाए? और दूसरों के प्रति क्या करेंगे? केयर एंड शेयर। और गिफ्ट दे दो, मदद करने से स्नेह कैसे बढ़ाए? स्नेह मिलन करने से स्नेह कैसे बढ़ाए? पिकनिक विकनिक। और हाँ, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करना, वो जैसा है जो है, जैसे परमात्मा ने उसे स्वीकार किया है वैसे ही उसको स्वीकार कर लेना। वैल्यू देयर डिफरेंसेस, मतभेद है दो व्यक्तियों में, वो दूसरे के मतभेद को वैल्यू करे, ये विधि है। वैल्यू द डिफरेंसेस एक विधि ये है, और दूसरा है इग्नोर द डिफरेंसेस। जब बहुत मतभेद है, कुछ कुछ बातों को छोड़ दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हर एक का अपना अपना है, ये इसका विचार है, ये इसका विचार है, ये इसका विचार है, जरूरी नहीं है सब एक ही हो जाए। काट काट की क्या लाठी, काठी वन वन की काठी है, वन वन की काठी है, हर एक अलग अलग है। तो ये भी समझ लेना है कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आया, किस संस्कृति से आया, किस धर्म से आया है, किस इस जन्म में कौन से घर से आया है, कैसा बैकग्राउंड था और पालना कैसी हुई उसको उसकी, और अब क्या है उसके आधार पर वो बना हुआ है। बचपन से लेकर अब तक उसका जो कुछ है उसका रिजल्ट ये वो वर्तमान है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते ये इसको ये क्यों नहीं आता, उसको वो क्यों नहीं आता। हमारा बैकग्राउंड अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है। हमारा धर्म अलग था, उसका धर्म अलग था। हमारे दूसरे माँ बाप के घर में यहाँ जन्म हुआ, उसका कहीं और जन्म हुआ। ये संस्कृति दूसरी थी, ये संस्कृति दूसरी थी, ये कल्चर सब कुछ भिन्न था। उसकी शिक्षा, उसका एजुकेशन स्टेटस सब कुछ अलग था। तो ये दो व्यक्ति एक जैसे हो ही नहीं सकते। कोई कोई बहुत अच्छा होगा, अभी अभी आई हुई आत्मा हो सकती है। आज कहा ना, पता नहीं चलता है। मंजूबन मान क्यों मिल रहा है इसको, ये आत्मा इतने ऐसी क्यों है। हो सकता है ये अभी अभी आई है, पर ये पता नहीं चलता है कौन अभी अभी आया है। तो सबको एक तो ये एक्सेप्टेंस, दूसरा कहीं कहीं इग्नोर करो, ध्यान नहीं देना है। डिफरेंसेस है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये तो होता ही है, जैसे कॉलेज में दो मित्र जा रहे हैं, गाड़ी पर एक्सीडेंट हो गया, एक का फ्रैक्चर हो गया, गलती उसके फ्रेंड की थी, तो क्या करता है उसको दोषी करता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी, कुछ नहीं होता है। तो जो चलता ही रहता है इसमें, इसमें क्या है, इग्नोर। तो इग्नोर द डिफरेंसेस। और लव को बढ़ाने के लिए उनकी विशेषताओं को देखना, वर्णन करना, अप्रिशिएट, प्रेज, और करेक्शन नहीं करना है। कभी कभी करना पड़े तो
धीरे से
करो, प्यार से कर दो। सहन करने की पहली विधि जो बाबा ने बताई है वो है प्रेम। क्या करो, प्रेम को बढ़ाओ। उदाहरण माँ का दिया एक, दूसरा सहनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। और स्पेशली हम अभी बात कर रहे हैं व्यक्तियों की, परिस्थितियों को छोड़ दो, केवल व्यक्ति, पेशेंस। दूसरी विधि है धैर्य, पेशेंस, पेशेंस चाहिए। जितना अधिक पेशेंस उतना सहनशीलता। जरूरी नहीं है कि तुरंत अभी के अभी ठीक हो जाएगा, वो अभी के अभी हो जाना चाहिए उसको, नहीं होगा, टाइम लगेगा। 2 बजे नहीं आएगी गाड़ी, गाड़ी का टाइम 8 बजे का है, स्टेशन मास्टर बाप है। तो धैर्य चाहिए कि दूसरा तुरंत परिवर्तन हो जाए, तुरंत बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे 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 धीरे, टिक 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 टिक, उद्धार दूसरों का करना है परंतु तुरंत उद्धार हो जाए ये मत सोचना। धीरे धीरे होगा उद्धार भी, धीरे धीरे होगा कल्याण भी, धीरे धीरे होगा सबका। और दूसरी विधि है सहन करने की, पेशेंस। तीसरा सहन करने के लिए और क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, उसको कहेंगे एम्पथाइज। एम्पथाइज, एम्पति अर्थात समानुभूति। एक है सहानुभूति, एक है एम्पति अर्थात दूसरा के साथ क्या हो रहा है, स्वयं को उस पोजीशन में रखना, समझना, ऐसा सोचना कि मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूंगा, स्वयं को उसकी जगह पर रखना। तो एम्पति, एम्पथाइज, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, उसका पर्सपेक्टिव, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया क्या है। क्योंकि दो व्यक्ति जब लड़ते हैं तो एक जो होता है वो केवल अपने पर ही फोकस होता है, उसके ऊपर फोकस नहीं होता है। मैं ही राइट हूं, परंतु वो भी राइट है, यह हो सकता है, ये हम भूल जाते हैं। तो ट्राई टू एम्पथाइज, ये तीसरा है। चौथा, सहन कैसे करें या कैसे बढ़ाए सहन शक्ति को, हाँ सहनशीलता मतलब ही टॉलरेंस, कैसे चुप रहना। और आई स्टेटमेंट होता है कि यू स्टेटमेंट होता है, इसको कहते हैं यूज आई स्टेटमेंट रादर देन यू स्टेटमेंट्स। मतलब मैं जो कह रहा हूं वही राइट है, आई स्टेटमेंट सारा सब जिसमें आई आया आएगा, मैं ऐसा कहता हूं, मैंने ऐसा किया था। और एक होता है यू, यू मतलब जिसमें दोष देना, तुम्हारी वजह से हुआ, अगर कहना भी है तो मेरी वजह से हुआ। स्टेटमेंट यू स्टेटमेंट यूज न करना, यू स्टेटमेंट अर्थात यहां पे फिंगर पॉइंटिंग, तुम, तुम्हारी वजह से, तुमने किया, दोष, ब्लेम गेम, ये ऐसा करता है, इसने ऐसा किया, पॉइंटिंग फिंगर्स, नुक्ताचीनी, हिंदी में कहते हैं नुक्ताचीनी, नुक्ताचीनी करना अर्थात दोष निकालना, छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण, फॉल्ट फाइंडिंग। तो यूज आई स्टेटमेंट नॉट यू स्टेटमेंट्स, अर्थात यहां पर क्योंकि सहन नहीं किए तो परिणाम है झगड़ा, डिस्प्यूट, परिणाम है मतभेद, लून पानी, संगठन का टूटना, और उसका दूरगामी परिणाम होता है फिर दो व्यक्तियों के बीच में अनबन है एक संगठन में, उसकी चर्चा होती है, दोनों का कुछ चालू है, उसके सूक्ष्म प्रकंपन संगठन के किले को हिलाते हैं। और क्या करेंगे, चौथा पांचवा सहन करने के लिए क्या करेंगे, चेक योर ईगो, क्या करना है, ईगो को चेक करना है, चेकिंग वंस ईगो, ये कहीं मेरे अहंकार की लड़ाई तो नहीं है, लड़ाई हम सोच रहे हैं ये सेवा में नुकसान हुआ, परंतु सेवा से ज्यादा कहीं ये मेरे अहंकार की लड़ाई तो नहीं है। और इंग्लिश में कहावत है कि इन द वॉर ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, अहंकार की लड़ाई में जो जीतता है वो वास्तव में हारता है, वहां उसने प्रूव कर दिया कि मैं राइट हूं, परंतु हार वास्तव में उसकी है। तो कभी कभी हो सकता है ये जो भी हो रहा है इसका सेवा से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ अहंकार की लड़ाई चल रही है अंदर कि मैं ये अहंकार की वजह से ही सहन नहीं कर पा रहा हूं, अगर उसी व्यक्ति की जगह कोई दूसरा होता, मेरा लौकिक भाई, लौकिक बहन या कोई लौकिक रिश्तेदार होता तो सहनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती, अभी वो है तो सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। कोई फ्रेंड है, फ्रेंड की सारी गलतियां टॉलरेट करते हैं, टॉलरेट भी क्या, कवर अप, छिपा देते हैं उसको, हम ये नहीं चाहते कि वो सबको पता चल जाए, घर की बात घर में, परंतु ये जो है इसको शायद हम अपना नहीं समझते, इसको हम स्ट्रेंजर समझते हैं, बाहर वाला समझते हैं, और इसलिए सोच रहे कि इसकी ये गलती सबको बतानी चाहिए, सबको ब्रॉडकास्ट कर दो सारी विश्व में, इसने जो कुछ कुछ किया है, सहन नहीं कर सकते उसकी छोटी सी भी बात। तो अहंकार ही हो सकता है शायद अंदर। फिर है सहनशीलता बढ़ाने के लिए समाना, एकोमोडेट, सहनशीलता बढ़ेगी कैसे, समाने से, समाते जाना, जैसे माँ अपने अंदर सब कुछ समा लेती है वैसे समाते जाना। एक व्यक्ति था तो उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, तो उसने उसकी माँ को ओल्ड एज होम जो होता है ना, वृद्धाश्रम, वहां रख दिया बूढ़ा घर में, और बीच बीच में मिलने जाता था उससे, तो उसकी माँ को पूछता तो कुछ चाहिए होगा, देख कुछ नहीं सब अच्छा है। तो एक बार जब गया तो उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, अगली बार गया तो थोड़ी ज्यादा ही सीरियस थी, तो वो फिर उसके बेटे को कहती है, वो पूछता है आपको कुछ चाहिए क्या, वो कहती है हाँ ये जो ओल्ड एज होम है ना, यहाँ पर फैंस नहीं है, तो आप इसमें फैंस लगा दो। और यहाँ पर ना कोई भी फ्रिज नहीं है, तो वो बेटा बड़ा अमीर होता है, तो आप फ्रिज लगा दो। तो क्योंकि ना मुझे बहुत मुश्किल हुई यहाँ पर जब मैं रहती थी, फैंस नहीं थे, फ्रिज नहीं था, और भी दो तीन चीजें वो बताती है कि ये चीजें तुम यहाँ यहाँ लगा दो। तो वो कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब तुम यहाँ थी, वो तो जस्ट अभी तो बस जा रही है। वो कहती है कि मैंने तो सब कुछ सहन कर लिया, पर जब तुम्हारे बेटे तुमको इधर छोड़ेंगे तो शायद तुम ना सहन कर पाओ इसलिए ये सब कर दो। तो माँ जो है वो सब कुछ टॉलरेट करती है, क्योंकि प्यार उसका बहुत होता है। और समाना, सातवा, सहन कैसे करेंगे? और बीइंग कंपैशनेट। क्यों कंपैशनेट? कंपैशन बेचारे परवश है, बेचारे परवश है, अधीन है, विकारों के अधीन है, माया की ग्रहचारी बैठी हुई है सामने वाले पर, क्या कर सकता है? वो भी समझता है जो कर रहा है गलत है, परंतु निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, विचार सागर मंथन, संडे की मुरली, ये सारी प्रोसेस में कुछ भी नहीं है। विचार सागर मंथन करो तो क्या होगा मंजुबिन, आज की मुरली से क्या होगा? खुशी बढ़ जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी। और विचार सागर मंथन करो तो जो बात अच्छी लगेगी, जचेगी, वो फिर तुम कहोगे, है ना? ऐसा ही है। जो बात अच्छी लगेगी या जच जाएगी अंदर, वो फिर तुम दूसरों को सुनाओगे। ये एक अच्छा फायदा है। कोई बात अच्छी लग जाएगी ना हमको, जच जाएगी, तो हम फिर सुनाएंगे, फिर जिसको सुनाएंगे उसका भी फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत, उसको भी जच जाएगी, वो भी सुनाएगा, तो बात ऐसी घूमेगी फिर। तो कंपैशन, रहम से भरना है। क्यों रहम से भरना है? क्योंकि उसने हम पर रहम किया है। अपने जीवन की उस स्थिति को, उस परिस्थिति को याद करना जिसमें हम लोएस्ट पॉइंट पर थे, और उस पॉइंट पर कैसे उसने हम पर रहम किया, या किसी दूसरे व्यक्ति ने कैसे हमारी मदद कर दी थी, उस इवेंट को, उस घटना को, उस वाक्य को याद करना, और जैसे मेरे साथ इन्होंने किया था, मदद की थी मेरी, वैसे अभी मुझे भी करनी है। जो जो या फिर जैसे बाप ने हम पर रहम की, वैसे मुझे भी सब पर करनी है। Taught by the power that pities me, I learn to pity them. जो पावर मुझ पर रहम करती है, वही शक्ति के आधार पर मैं दूसरों पर रहम करता हूं। तो रहम सातवा, आठवा स्वमान। स्वमान अभी तक बोला नहीं, कौन से स्वमान है? सहनशीलता वाले। अभी अभी कुमारियों से मुलाकात या किस में मुलाकात में संडे में कहा था ना, सहनशक्ति की देवी हूँ, सहनशीलता की, कहाँ पर था ये पॉइंट? कुमारियों से कहाँ पर था? हाँ तो वही पूछ रहे, अव्यक्त मुरली में कहाँ था ये पॉइंट? हाँ उसमें कहाँ था मुरली, तो पता चल गए। संदर्भ क्या था? थर्ड पेज था, संदर्भ क्या था? समान क्या है पहले चलो वो बताओ, क्या क्या समान है सहनशीलता के लिए? सहनशीलता का देव हूँ, देवी हूँ, सहनशीलता का अवतार हूँ, देव हूँ, देवी हूँ, समंदर, और मेरी सहनशीलता की शक्ति, मुझसे सहनशीलता की शक्ति सबको जा रही है, और सोमान बताओ मैं क्या? सहनशीलता की मूर्त हूँ। हम पूर्वज है इसलिए सहन कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, हम पहले आए हैं, हम आधार स्तंभ है, उद्धार मूर्त है, और रहम दिल है, वो हो गया कंपैशन में, परोपकारी है, कल्याणकारी, सुखदेव। आज क्या सम्मान दिया है बाबा ने? तुम सब कौन हो? मिलिट्री नहीं, मिशन, ईश्वरीय मिशनरी, ईश्वरीय मिशनरी हो, सबको सुख देने वाले हो, और वो सारा दाता हूँ। तो समान, समान से फिर उसके बाद में नौवा, सहनशीलता को कैसे बढ़ाए? ड्रामा, ड्रामा से, ड्रामा के ज्ञान से। सबका अपना अपना पार्ट है, सबके हिसाब किताब यहाँ चुकतू हो रहे हैं, सभी निर्दोष है। ये जो हो रहा है खेल हो रहा है, यहाँ पर खेल समझकर देखना है इसको। इससे छोटी छोटी चीजों से प्रभावित, इसने ये किया, इसने वो बोला, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए है। तो छोटी छोटी फीसें में तो ये ड्रामा को कैसे देखेंगे? खेल की तरह। खेल में तो ऐसा ही होता है ना, खेल तो ऐसा ही रहता है। इधर लक्ष्मण बहुत गुस्सा होता है, रावण ऐसा क्यों करता है, रावण ऐसा क्यों करता है, रावण इधर जोर जोर से क्यों हंसता है, पीछे दोनों मिलके बैठ के चाय पीते हैं ड्रामा में। ड्रामा है। तो इधर रावण सीता को घुमा पकड़ के लेके जा रहा है, उधर वो खुद ही घूम रही है उसके साथ, कुछ भी हो सकता है। ये तो नाटक है ना, नाटक में जो दिख रहा है वो थोड़ी ना है, वो तो खेल हो रहा है यहाँ। तो विलन को भी कहते हैं वेल डन। हाँ, तो एक हिंदी फिल्मों में एक एक्टर है जिसने हमेशा विलन का पार्ट प्ले किया है, उसके बेटे ने उसका एक बायोग्राफी लिखी है, माय फादर द विलन। देखो उसमें भी उसको ये है। मदनपुरी। माय फादर द विलन। तो कहाँ थे हम? सोमान, नौवा ड्रामा, और एक लास्ट बता दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव, ड्रामा, टेंथ फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और माफ कर दो, ज्यादा उसके इसमें नहीं जाना है, भूल जाओ, आगे बढ़ते चलो। जैसे दूसरों ने भी तो हमारी गलती भूल गए और माफ कर दिया हमको, वैसे हम भी लेट गो, पकड़ के नहीं बैठना है। 10 साल हो गए उसको रिमाइंड ही करा रहे, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। तो तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, पकड़े हुए हैं अंदर, मन इतने सारे इवेंट्स अंदर समाये हुए है। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूलते जाओ आगे बढ़ते जाओ। यहाँ हर एक कुछ ना कुछ तो करेगा गलती वगैरह, जैसे हमने भी तो की है, उसने भी की, तो थोड़ी ना दूसरों ने कैसे हमको फॉरगिव, भूल गए, वैसे हम भी भूल जाए उसको। तो ये सारा और दूसरा शक्तियों को प्रयोग करना, और भी कह सकते हैं इसमें तो बहुत हो सकता है, शक्ति को यूज करना, आह्वान करना उस शक्ति का कि आ जाओ मुझे अभी सहन करना है ये जो है। और ये भी सोचना कि ये हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट्स यहाँ सेटल हो रहा है। कल कहा था पुनर्जन्म का हिसाब किताब क्या भारी है, बहुत भारी है। तो ये सारा हिसाब किताब यहाँ चुकतू हो रहा है। तो अच्छा, दूसरा सहन करना ही है तो कैसे सहन करो? खुशी खुशी से सहन करो ना, रो रो के, दुखी हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये मुझे ही ऐसा क्यों करते है, हा? मरमर के सहन नहीं करना है, खुशी खुशी से सहन करो। सहन करना भी है तो, और सहन किए बिना महान बन भी नहीं सकते। सहनशीलता मूर्ति बन रही है, फाइन स्ट्रोक्स, मूर्ति तैयार है, अब जब फाइन स्ट्रोक, चेहरे को सुंदर बनाना है तो फाइन स्ट्रोक्स होते, ज्यादा दर्द होगा उसमें। नाक को ठीक करना है, नाक सब कुछ ठीक है, नाक तुम्हारी थोड़ी ठीक नहीं है, तो ब्रश चाहिए, तो फाइन स्ट्रोक्स, फ्राइंग स्ट्रोक्स देने के लिए सामने वाली आत्मा आई है, वो नहीं सहन कर सकता है कि तुम असंपूर्ण रह जाओ। वो उसने ठान ली है कि मैं इसको संपूर्ण बना के ही छोड़ूंगा। कितनी बड़ी रिस्क ली है उसने संबंधों की, उसके एट द स्टेक ऑफ रिलेशनशिप्स, पर इसको ठीक करना ही है मुझे। तो वो आया है अपना छेनी और वो लेके हथौड़ा। हाँ वो हमारी शुभ, तो हम नहीं देख पा रहे पर ना, तो हम देख ले कि इसकी ये शुभ भावना है। तो सहन करने के लिए सबसे पहला गुण चाहिए प्रेम। प्रेम होगा तो ये सारा अपने आप ही आ जाएगा। अगर प्रेम ही नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा। प्रेम हो, जैसे माँ के पास प्रेम है, अपने बेटे के लिए सब कुछ सहन कर लेती है, सब कुछ। धैर्य सहन करना है, धैर्य, धीरज सहन करने के लिए, समानुभूति, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लो और देखो। सहन करने के लिए आई स्टेटमेंट्स, यू स्टेटमेंट्स यूज नहीं करना है, तुम तुम्हारी वजह से, मतलब ब्लेम नहीं करना है। सहन करने के लिए अपने अहंकार, शायद हो सकता है ये सारा कुछ हो रहा है, हम सोच रहे हैं हम सेवा में नुकसान ना हो जाए, सेवा में ऐसा हो जाए या योग, ये हो सकता है सूक्ष्म में अहंकार की लड़ाई चल रही है अंदर। समाना, सारी चीजों को संभाल लेना, जैसे सागर सबको संभाल लेता है, हम भी सागर की संतान है। सागर के पास आए हो रिफ्रेश होने, कल था या आज है? आज है या कल है? सागर के पास आए हो तुम रिफ्रेश। फिर है रहम, दरिया दिल, रहम दिल, फ्राक दिल, बड़ी दिल, मैग्नानिमस हार्ट, दिलशाह। हाँ उस दिन था ना, दिलशाह बनो, उदार चरितम तू। फिर सोमान, भिन्न भिन्न सोमान को याद करना कि अभी मुझे सहन करना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, कौन सा सोमान को आह्वान का आह्वान करूं। फिर ड्रामा, ड्रामा को भी देख लेना कि ये ड्रामा में ज्ञानबान कैसा हो। ज्ञानबान मंजू बहन, दो शब्द है आज की मुरली में ज्ञानबान के लिए, वो तो सबसे अच्छा ज्ञानबान है। मन बना हो, रिफाइंड हो, जोहरदार हो। ज्ञानबान कैसा हो? रिफाइंड और जोहरदार। तो ज्ञामा ड्रामा का ज्ञान भी कैसा हो हमारे पास? रिफाइंड और जोहरदार। सबसे बड़ा ज्ञानबान कौन सा है? मन मनोभाव। फिर है क्या ये? फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूलते जाओ और माफ करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, पकड़ के नहीं रखो, शक्तियों का आह्वान। तो ये सारी विधि है सहन करने की। ओम शांति।
एक शांति बाबा, हसीनों का हसीन है बाबा, सुंदर है तुम सा हसीन बाबा, और कोई नहीं इस जगह में। और माया भी क्या है? माया भी उससे भी ज्यादा हसीना है, पर वो क्या है? दुखदाई है
उससे भी ज्यादा
वो क्या है? संसार के हिसाब से तो माया ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वो अपनी हसीन स्वरूप में क्या करेगा, अपने को क्या करेगी, अब हमें उसमें फंसाने की प्रयत्न करेंगे। और सबसे ज्यादा किसको फंसाने की प्रयत्न करेंगे? जो उसकी राह से अलग जो चल पड़े है, क्योंकि हम उसकी ग्राहक बन के पूरा आधा कल्प बिताया है। तो अभी क्या है, अपने ग्राहक तो कहीं दूसरी जगह भी जा रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अभी वो दुखदाई हसीना को छोड़कर हम सुखदाई हसीन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको क्या हो जाता है? अंदर ही अंदर जलन हो जाता है। अब मैंने इतनी समय तक इन लोगों को पालना करके रखा, इन लोगों को मैंने अपने गोद में बिठा के रखा, इन्हों को मैंने अपनी दिल चाहा जो मैं चाहती थी वो करा के रखा। अब ये क्या कर रहा है? मेरी राह से दूसरी राह में जा रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक रंग लाकर फिर से हमें बाबा की जो राह है उससे अलग करने के लिए प्रयत्न करती है। फिर भी हमें बाबा हसीना है, तो फिर बाबा हमें अपनी अपनी तरफ ला करके फिर हमें आगे बढ़ाने साथ। ओम शांति।
कमलेश भाई के पास दे दो माइक। अंधे का पुत्र अंधा अब बोलो।
ओम शांति। अंधे का पुत्र
अंधा
ये तो हम सभी ने सुना हुआ है कि ये कहा जाता है मोह के लिए। मोह मनुष्य को अंधा बना देता है। भले उसको स्थूल आंखों से दिखाई तो दे रहा है लेकिन उसका अपने पुत्र के प्रति संतान के प्रति इतना मोह है उसकी हर गलती को वो माफी कर देता है। और वो संसार के लिए समाज के लिए जैसे कि शाप बन जाता है। उसके इतिहास में भी बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन अभी हमें यहाँ पर खुद अंधा नहीं बनना है। तो हमारा जो मोह है
नहीं होगा, वो अंधा नहीं होगा।
तो मोह के बदले बाबा ने कहा था कि शुद्ध स्नेह हो, कि हमारा अपने पिता के प्रति शुद्ध स्नेह है। और हमारा स्नेह है तो हमारे में मोह नहीं आ सकता।
ये एक ही अर्थ है इसका कि और भी कुछ अर्थ हो सकते हैं इसके?
वैसे तो एक ही है।
चलो अरविंद भाई को दे दो। माया की डकैती।
ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सभी को जो अनेक खजाने दिए हुए हैं,
माया रॉबरी,
समय, संकल्प, श्वास और जो ज्ञान, गुण, शक्तियां, तो इन खजानों के प्रति माया की भी विशेष नजर है। वो देखती है कि ये ब्राह्मण आत्मा इन सबसे संपन्न बन के आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को मालामाल कर रहे हैं और एक अच्छे समाज की स्थापना में सहयोगी बन रही हैं। तो माया देखती है कि इनके जो खजाने हैं, ये खजाने ही इनको आगे बढ़ने के जो साधन है, आधार हैं। तो माया विशेषकर इन खजानों को चुराने का काम करती है। जैसे कि समय है, तो देखती है कि ये समय ज्ञान योग में लगा रहे हैं, तो माया उस समय को डाइवर्ट करने के लिए कहीं और ना दूसरी जगह पर उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे कि साइंस के साधन हैं या और भी जो कई बातें हैं, घूमने फिरने का जो स्थान है, को देखने का अच्छे स्थान होते हैं, उनमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। इसी प्रकार से माया डकैती डालती है।
तो
समय, संकल्प,
ट्रीटमेंट, क्या इलाज?
इलाज क्या? माया को दूर से
आग लगा
दूर रखने का है।
डाकुओं को दूर भगाने के लिए क्या करते हैं?
पहले से सुरक्षा
के अंदर
का इंतजाम करते हैं, डबल लॉक लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि डबल लॉक लगा के रखो तो माया कभी भी नहीं आएगी। डबल लॉक अर्थात एक तो याद और सेवा, अटेंशन।
और डाकुओं को क्या किया जाए?
अटेंशन अच्छा।
डाकुओं को क्या किया जाए?
डाकुओं को उनका परिवर्तन करना है, उनका स्वरूप का। बाबन का भी मुरली में कहा है कि पांच जो बेकार हैं उनका रूप परिवर्तन करो।
कैसे करेंगे डाकुओं का परिवर्तन? इतने जल्दी हो जाएंगे?
जैसे काम बेकार है तो बाबन का काम शुभ कामना के रूप में उनको परिवर्तन करो।
हिस्ट्री शीटर है सारे के सारे, जेल बर्ड से। ठीक, चलो ओके।
ओम शांति।